संत महानुभाव, सत्संग जीवों, माताओं बहनों और भाई, यह विचार विनिमय का समय है। तो साधकों के कुछ प्रश्न आए हैं, मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। अहम कृति रहित, अप्रयत्न, निर्विषय, निसंकल्प, निर्विचार होकर शांत मौन होते ही तंद्रा, निद्रा, जड़ता व बेखबरी में आबद्ध हो जाता हूँ। तो इस जड़ता में डूब जाने से बचने हेतु कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। मेरे साथ यह कठिनाई वर्षों से चल रही है। मौन होते ही हर बार ऐसा ही होता है, कोई भी प्रगति होती नहीं दिखती। तो कैसे आगे बढ़ूं या क्या करूं? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि शारीरिक दुर्बलता, प्रसंगता को मैं जानती हूँ, काफी अस्वस्थ शरीर है उनका। तो शारीरिक दुर्बलता और जीवन की नीरसता, इन्हीं से जड़ता और निद्रा, आलस्य, तंद्रा खाई रहती है, ये कारण है। शरीर बहुत ही अस्वस्थ और दुर्बल है और जीवन में रस नहीं है, रस की कमी है, सरसता नहीं है। तो उन्होंने ऊपर जो लिखा है कि अहंकृति रहित और प्रयत्न, निर्विषय व निसंकल्प, निर्विचार, तो ये सब शब्द को उन्होंने लिखे, लेकिन वस्तुतः है अहंकृति रहित अप्रयत्न होने पर जीवन में इतनी शांति और इतनी सरलता और इतना अच्छा लगता है कि उस समय तो दुर्बल अथवा सबल, बीमार अथवा स्वस्थ शरीर का भास भी नहीं रहता, जड़ता और शिथिलता कहाँ रहेगी। अहंकृति रहित होना ये तो बहुत ऊंची बात है। जब सब प्रकार के संकल्पों का त्याग कर दिया जाए, जब की हुई भलाई के फल और अभिमान का त्याग कर दिया जाए और मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए इस क्षण में कुछ नहीं करना है, तो सब संकल्पों के त्याग के बाद, ममता और कामना के छोड़ने के बाद, सब व्यक्ति अहंकृति रहित होता है, अप्रयत्न होता है, जिसमें कि शरीर की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। तो उसमें तो इतना रस है, इतना आनंद है, इतना हल्कापन है कि वहाँ जड़ता और शिथिलता कहाँ पहुँचेगी। तो मेरे जानते मेरे भाई का ख्याल जरूर होगा कि वे अहंकृति रहित हो गए, कि वे निर्विचार हो गए, कि निःसंकल्प हो गए, ऐसा उनका ख्याल होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर होगा तो उसमें जड़ता, शिथिलता, निद्रा और तंद्रा छू नहीं सकती है। इसलिए ये जो बातें बताई गई, सत्य की स्वीकृति से साधन तत्व की अभिव्यक्ति है। अप्रयत्न हो जाना, निर्विषय हो जाना, निसंकल्प हो जाना, निर्विचार हो जाना, यह सत्संग का फल है। सत्य को स्वीकार किया और उसके प्रभाव से यह साधन तत्व अभिव्यक्त हुआ। तो ऐसा जब होता है तब संग्रह निद्रा जड़ता नहीं रह सकती है। अब उन भाई का प्रश्न है, उनको मैं जानती हूँ बहुत पहले से, वेदांत के आधार पर अपने को संभालने की चेष्टा में वो लगे हैं, स्वामी जी महाराज के पास भी बहुत बैठे हैं और साधारण व्यवहार में, रहन सहन में काफी सावधानी भी है। फिर भी मेरा यह निवेदन है कि जीवन में सरसता आनी चाहिए। सरसता कैसे आएगी? तो उनके लिए भगवान ने रास्ता साफ कर दिया है। घर गृहस्थी के झंझट में ज्यादा फंसने की उनकी अब कोई बात है ही नहीं, सब कर्तव्य से निवृत्त हो चुके हैं। तो सरसता तो आती है, ऊंचे जीवन की लगन से, मुझे अब अविनाशी जीवन चाहिए, मुझे अब देहातीत जीवन चाहिए, मैं अब निज स्वरूप में स्थित हुए बिना रह नहीं सकता। ये लगन जब जाती तो निद्रा तंद्रा जड़ता आलस्य सब खत्म हो जाती। आप कहेंगे कि क्या करें, तो मेरा ऐसा अनुमान है, सच्ची बात तो वे स्वयं ही जान सकेंगे, केवल उनकी मदद करने के लिए मैं कह रही हूँ कि इतने दिनों तक उन्होंने अप्रयत्न होना, निर्विचार होना, निसंकल्प होना, देहातीत जीवन में स्थित होना, इन बातों पर अध्ययन किया है, विवेचन किया है खूब, लेकिन ये बातें उनके व्यक्तित्व में आई नहीं है। तो अब ऐसा करना चाहिए कि जब शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तरह तरह की उसमें तकलीफें रहती हैं, तो उनको पहले देह से संबंध विच्छेद करने वाली बात ज्ञान के प्रकाश में अपने द्वारा स्वीकार करना चाहिए और हठपूर्वक शरीर को लेकर बैठने की चेष्टा नहीं करके कमजोर शरीर जिस पोस्चर में ठीक प्रकार से रहे उस पोस्चर में उसको रख दीजिए, इजी चेयर में डाल दीजिए तो उसको संभालने में आपको ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहना पड़ेगा। और फिर उस विवेक के प्रकाश में जिसने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखला दिया, माता के प्रति, पत्नी के प्रति, बहन के प्रति, बहन के बच्चों के प्रति जो अपनापन माना था, उसमें से एक भी सत्य नहीं निकला, सब अपनी आंखों के सामने देखते ही देखते सारा खेल तमाशा खत्म हो गया। तो इस अनुभव का आदर करके इस विवेक के प्रकाश में मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इस सत्य को पहले हृदयंगम करें। सुख का भोग तो शरीर के माध्यम से उनके जीवन में अब कुछ है ही नहीं, तो किसी प्रकार का सुख तो नहीं है, लेकिन सुख की वासना रह गई हो, बीते हुए भोगे हुए सुखों का प्रभाव रह गया हो, तो वो ज्ञान के प्रकाश में कटेगा। नया सुख भोगते नहीं है इसलिए नया राग बनेगा नहीं, और विवेक के प्रकाश में इस सत्य को स्वीकार करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इसको स्वीकार करें तो शरीर से जब संबंध टूटेगा और देहातीत जीवन के प्रति लगन बढ़ेगी कि अब तो हम उसके बिना किसी प्रकार से रह ही नहीं सकते, तो प्रक्रिया सब उनका जाना हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, सब मालूम है, फिर तो और कुछ करना नहीं पड़ेगा। और सचमुच जीवन में जब ऊंचे लक्ष्य के लिए लगन बढ़ जाएगी तो रस बढ़ जाएगा और सरसता आ जाएगी, तो आलस्य और तंद्रा और निद्रा खत्म हो जाएगी। और दुर्बल शरीर को कुछ ज्यादा समय लगता है नींद के लिए, तो उसको देने में संकोच न करें, जितने समय में अच्छी नींद आ करके कमजोर शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए उतना समय भले निद्रा में लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद आलस्य और तंद्रा नहीं रहना चाहिए। जब आंख खुल जाए तो सचेत होकर के, सावधान होकर के मुख सत्संग में स्थित हो जाइए, और यदि शारीरिक असमर्थता देखकर, जीवन की असफलता देखकर कहीं सर्वसमर्थ की शरणागति पसंद आ जाए तो समर्पण योग में रहिए। रास्ता तो खुला हुआ है सब, कोई जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते से चल करके अपने को आगे बढ़ने में नहीं लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसके साथ और कुछ स्वीकार न करें, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि अरे भाई इतने दिनों से तो मैं वेदांत था, अब ईश्वर विश्वासी कैसे बनूं, अरे जीवन की आवश्यकता मालूम होती है तो बन जाओ। वेदांत का प्रकाश जिसका है, शरण्य बन करके अपनी कृपा शक्ति से वो ही संभालेगा। विवेकी जन को वह ज्ञान का प्रकाश दे करके संभालता है, विश्वासी जन को कृपा की आवश्यकता अनुभव करने वालों को वह अपनी कृपा बन के संभालता है तो है तो वही, तो संकोच किस बात का है, जैसा अच्छा लगे वैसा कर डालो। जागने पर उन्हीं भाई का प्रश्न है, जागने पर जो बिना प्रयत्न के स्वतः ही सत्य संबंधी चिंतन या प्रभु प्रार्थना होने लगती है तो उसे निरर्थक चिंतन या विचार का उदय समझा जावे अथवा उसे व्यर्थ चिंतन या मस्तिष्क का व्यायाम मात्र समझा जावे। सच्चे प्रश्न है, साधक का प्रश्न है, बनावटी बातें नहीं है, बहुत ठीक ठीक लिखा है उन्होंने जैसा वो सीन कर रहे हैं। तो इसके संबंध में स्वामी जी महाराज ने जो बातें हम लोगों को सुझाई हैं वो ये है कि ईश्वर से आत्मीय संबंध स्वीकार किए बिना जो अपने पर जोर डाल करके चिंतन किया जाता है तो ईश्वर चिंतन अच्छा है, ईश्वर को याद करना ऊंची बात है, बढ़िया बात है, ऐसा मान करके बिना संबंध के बिना प्रियता के जो जोर डाल करके नित्य नियम के रूप में किया जाता है। तो महाराज जी ने एक जगह पर कहा, एक रिकॉर्डिंग किया हुआ है, दादा हनुमंत सिंह जी को संबोधित करके कह रहे हैं कि हनुमंत सिंह जी सुनो, देखो ऐसा होता है, क्या होता है कि अभ्यास करते करते जानबूझकर सचेत होकर चिंतन करते करते उस चिंतन में आसक्ति हो जाती है, भगवत अनुराग पैदा नहीं होता। तो क्या होता है कि उसको छोड़ने का जी नहीं चाहता। अगर कह दिया जाए कि भाई फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दो, तो साधक उसको छोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये तो अच्छी साधना है, इतने दिन से मैं करता आया हूँ, इसको छोड़ूं कैसे। तो करते करते करने वाली साधना में अपनी आसक्ति पैदा हो जाती है, उसको किए बिना रहा नहीं जाता है, परंतु उसके द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो इसको ना मैं व्यर्थ चिंतन कहूंगी ना मैं सार्थक चिंतन कहूंगी। स्वामी जी महाराज ने जिन शब्दों में उत्तर दिया वो उत्तर मैंने आपके सामने रख दिया और आप ही का अनुभव है कि मेरे बिना किए होता रहता है। तो अगर यह सार्थक चिंतन होता तो इसका भी प्रभाव जीवन पर हो करके आपको तंद्रा निद्रा से ऊपर उठ जाना चाहिए था। अगर यह विचार का उदय होता, विचार मार्ग के साधकों के लिए बताया गया कि निःसंकल्प होकर अहम कृति रहित होकर अप्रयत्न हो जाने पर उनमें स्वतः उस विचार का उदय होता है जो विचार उनको सत असत के विभाजन में समर्थ बना देता है, जो बल उनको शरीरों से तादात्म्य तोड़ने में समर्थ बना देता है। तो आपके जान से अगर ये जो कुछ आप में होने लगता है वह विचार का उदय होता तो समस्या हल हो गई होती, ठीक है ना? तो समस्या तो हल हुई नहीं भाई, आप ही कह रहे हैं कि तंद्रा निद्रा से मैं मुक्त नहीं हो सका। तो उस अलौकिक विवेक के प्रकाश में उस विचार का उदय हो जाए जो कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का बिल्कुल आपको दर्शन करा दे, अनुभव करा दे, उसके बाद तंद्रा निद्रा का प्रश्न रहेगा नहीं रहेगा? और भाई स्वयं ही कहते हैं कि तंद्रा निद्रा आलस्य के रोग से मैं मुक्त नहीं हो सका, तो उनको अपने से अर्थ ले लेना चाहिए कि मेरे भीतर जो कुछ हो रहा है वह है न सार्थक चिंतन है न विचार का उदय है। तब आप कहेंगे कि है क्या, तो मैं कहूंगी कि सारी जिंदगी जो आपने अध्ययन किया है उसका फल है। ऐसा होता एक माँ एक दिन मुझसे बात करने आई तो बैठ करके बातचीत कर रही थी और बड़ी तकलीफ में बाहरी दृष्टि से शारीरिक कष्ट में है, सहायता करने के लिए साथ में कोई नहीं है, एक लड़की को अपने साथ रखती है वो भी अब असमर्थ हो जाने पर सेवा करने वाले की तो मौज आ जाती है, हमारी इच्छा होगी तो तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अपनी मौज में आ जाते हैं। वो कुछ असमर्थ आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, वो सेवा करने वाले तो अपनी खुशी पर करेंगे नहीं करेंगे, ये सब बताती जा रही थी, ऐसे हुआ है, ये दशा है, वो दशा है, और ये सब क्या है, ये सब जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, ये कहाँ से आ गया बीच में? तो ये अध्ययन का फल है, ये जो पढ़ते पढ़ते सब शब्दावलियाँ याद हो गई और देहातीत जीवन के क्या लक्षण है वो सब याद हो गए, तो उसका फल है कि इतना अंधकार छाया हुआ है, अधिकार लालसा नहीं मिटी, क्रोध आ रहा है, सेवा करने वाले क्यों नहीं सही सेवा कर रहे हैं, इसके लिए क्षोभ हो रहा है, सब हो रहा है और रटी रटाई बात दोहरा रहे हैं, ये सब जहाँ हो रहा है हो रहा है, जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, तो आपके आंसू काहे को आ रहे हैं, है ना? विचारने की बात है। इसलिए मैं अपने भाई को कह रही हूँ कि आप इसको विचार का उदय को मान ही नहीं सकते हैं, और मेरे कहने से नहीं, अपनी दशा को ही देख करके आपको अर्थ लगा लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो वो किए हुए अभ्यास के बल पर स्नायु मंडल में पहले से याद की हुई चीजों की पुनरावृत्ति हो रही है। एक माँ इलाहाबाद में कुंभ के अवसर पर स्वामी जी महाराज को मिली, तो काफी बड़ी उम्र की थी और स्वामी जी महाराज उस समय उतनी उम्र के नहीं थे, तो बच्चे की तरह स्वामी जी की पीठ के पास बैठ करके खूब पीठ सहलावे, हाथ पर सिर पर हाथ फेरे, खूब दुलार करे, जैसे स्वामी जी बच्चा है वो माँ है, ऐसा करे और रोवे खूब, कहे कि महाराज अब तो मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ, अब आप तो मुझे पार लगाइए, क्या बात है माँ, तो हमने इतने दिन ऐसा किया। उसने बड़े जोर से जप किया था, तो अब उस समय उसकी दशा ऐसी हो गई थी कि वो कहे कि मैं चाहती हूँ कि अब ये छूट जाए, मैं सो जाऊं, रस आया नहीं, जीवन से अभिन्नता हुई नहीं, शरीर का तादात्म्य टूटा नहीं, और स्नायु मंडल में क्रियात्मक वेग से इतना वो सब भर गया कि अब वो सोना चाहती है तो उसके नींद नहीं आती, और वही बातें पुनरावृत्ति होती रहती है। तो जीवन नहीं मिला तो वो एक मानसिक रोग हो गया। वो कहे कि मैं चाहती हूँ कि जब करना छोड़ कर कुछ देर के लिए सो जाऊं तो ये बंद ही नहीं होता है। मस्तिष्क में स्नायु मंडल में एसोसिएशन, चेन ऑफ एसोसिएशन, थॉट वेव्स इस प्रकार से गतिशील हो गए कि अब उसके कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे मोटर चलाने वाले लोग चलाते हैं और चलाते चलाते उसमें कोई भी मशीन कमजोर हो जाए तो ब्रेक ड्राइवर के हाथ में ही नहीं आता है, वो चाहता है उसको कंट्रोल करना तो कंट्रोल होता ही नहीं है। ये दशा हो जाती है स्नायु मंडल की, ज्यादा जोर डाल करके उसमें भर दो तो फिर उसके बाद तुम उस क्रिया को बंद करना चाहो तो बंद नहीं है, तो होती रहेगी, तो नींद भी नहीं आ सकती है, सो ही नहीं सकती है, तो जीवन भी नहीं मिला, सब किसी अभिव्यक्ति भी नहीं हुई और मानसिक रोग पैदा हो गया, ऐसा होता है। इसलिए महाराज जी ने सभी साधकों को खूब याद दिलाया कि भैया जिस भूमिका में तुम्हारी साधना सजीव बनेगी उसकी तैयारी पहले करो। क्या करो? तो पहले इस अपनी भूल को मिटाओ। अगर देहातीत जीवन की आवश्यकता आप अनुभव करते हैं तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, इस सत्य को हृदयंगम करो। इस सत्य की स्वीकृति से जब देह के प्रति आपके भीतर जो महिमा बैठी है वो मिटेगी, तब आप शरीर से ऊपर उठने के अधिकारी बन सकेंगे। और अभ्यास करते 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 उसका फल क्या होगा? तो उसमें आसक्ति हो जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाता, परंतु उसके द्वारा जीवन में रस पैदा नहीं होता। तो नींद से जगते ही मस्तिष्क में ये क्रियाएं जो होने लगती हैं, तो इन क्रियाओं को विचार का उदय नहीं समझना चाहिए। और नहीं तो विचार का उदय तो महापुरुषों के जीवन में हुआ है समय समय पर। रमण महर्षि के जीवन की छोटी सी घटना उनकी जीवनी में पढ़ा था मैंने। 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने से पहले चिंतन में तो रहते ही थे, विचार इनका बहुत था शुरू से ही। तो एक दिन इनके भाई ने चिट्ठी डालने के लिए दिया कि पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए भेजा कि खरीद के ले आओ पोस्ट ऑफिस से, और ये अपनी मस्ती में थे, इनके ध्यान में ही नहीं रहा, तो बिना खरीदे घर लौट करके आ गए। तो बड़े भाई ने मांगा खिलाओ, तो गए नहीं थे क्या, भूल गए हैं। तो बड़े भाई ने बहुत डांटा और कहा कि क्या करेगा इतना बड़ा लड़का, 11-12 साल का, 13 साल के थे, क्या करेगा इतना बड़ा लड़का, पोस्ट ऑफिस से स्टैंप खरीद के नहीं ला सकता, मर जा तू। ऐसे करके बड़े भाई ने डांट दिया। ये चले गए एकांत में, कोठरी बंद कर ली, लेट गए और पूछने लगे ठीक तो है, भाई साहब ने ठीक ही तो कहा है, क्या है इसमें, क्या है ये, तो ये क्या है, मैं क्या हूँ। इतने जोर से उनके भीतर ये जागृति हुई और लेते लेते मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को मैंने छोड़ दिया है, मैं ये शरीर की मृत्यु है, इसका नाश है, मैं इससे अलग हूँ, विचार का उदय हुआ और शरीर नाशवान है और मैं अविनाशी हूँ, उनको दर्शन हो गया उसी उम्र में। और वहाँ से उठ करके वो चल दिए कि हाँ ठीक है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जाता हूँ। तो विचार का उदय तो एक ऐसा आमूल परिवर्तन वाली चीज है कि उसके बाद तो फिर कभी भ्रम हो ही नहीं सकता कि शरीर और संसार से मेरा त्रिकाल में भी कभी कोई संबंध था अथवा है अथवा होगा। बहुत ऊंची चीज है योग की साधना में, चाहे समर्पण योग हो और चाहे अन्य प्रकार का योग हो, योग की साधना में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ कि अपने लिए कुछ भी करणीय शेष नहीं रहा। तो शरीर से संबंध रहा नहीं, अपने को कुछ चाहिए नहीं, अपना कुछ है नहीं, तो अपना कुछ नहीं है, अपने को कुछ नहीं चाहिए और अपने को कुछ करना नहीं है। तो ये बातें साधक अपने द्वारा जब स्वीकार करता है और उसके भीतर से शांति की अभिव्यक्ति होती है तो उसमें यह विचार उदित होता है और तत्काल ही तीनों शरीरों से तादात्म ऐसा टूटता है कि स्वामी जी के मुख से मैंने सुना था कि फूल के तोड़ने में देर लगती है और इस सत्य के अभिव्यक्त होने में देर नहीं लगती, पलक के गिराने और उठाने में काल लगता है और इस विचार के उदित होने में काल नहीं लगता है। सुना था मैंने और कई स्तर पर कई अवसरों पर मैंने ऐसा देखा भी कि कब सारा संसार शरीर सहित मुक्त हो गया तो पता ही नहीं चलता है, कुछ नहीं रहता है, टाइम एंड स्पेस, काल और स्थान का कंसेप्शन तो ऐसा होता है जैसा कि कभी था ही नहीं। ये तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत बढ़िया बात है और बहुत सच्ची बात है। और विचार मार्ग के साधकों के लिए तो पुरुषार्थ की अंतिम सीमा है, फिर उसके बाद और कुछ करना नहीं होगा, अपने आप ही सब खत्म हो जाता है। तो इस पर आपकी दृष्टि रहे और इसके लिए आप सही प्रकार से प्रोसीड करें तो आ जाएगा जीवन में, क्यों नहीं आएगा। 50% काम तो आपका प्रकृति ने कर दिया है, अब आधा ही सब बाकी हो जाएगा।